नमस्कार भारत, तारीख 2 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अमरीकी राष्ट्रपति ने उठाया पाकिस्तान को मदद पर सवाल, कहा बदले में सिर्फ छल मिला। इस्लामाबाद का जवाब, अफगानिस्तान में नाकामी से खींचे ट्रंप। ईरान में पांचवें दिन भी जारी रहे विरोध प्रदर्शन, अब तक 13 की मौत। राष्ट्रपति रूहानी ने कहा विरोध को अवसर में बदलेंगे।
به نظر من اون چی که این چند روز واقع شده ظاهرش یه نوع تهدید بوده، باید تبدیل کنیم به فرصت.
اور اتر پردیش کے متھرا میں چار دشکوں سے بیمار گایوں کی دیکھ ریکھ میں جٹی جرمن مہیلا پر سنوائیں گے خاص رپورٹ۔
بچہ پڑا ہوا ملا راستے میں، پام ٹوٹا بیچ اور آرا سرین میں کیڑا ستا کا ہوا ہے، مکی بہتا تھا نہ بیان کر سٹیٹی تھا۔
دوسری خبروں کے ساتھ ہوگی اخباروں کی سمیکشا بھی، لیکن پہلے وشو سماچار۔
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। पाकिस्तान ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के खिलाफ विरोध जताया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर अमरीका से अरबों डॉलर की मदद लेने के बावजूद धोखा देने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। नए साल के अपने पहले ट्वीट में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को पनाह दी हुई है जिन्हें अमरीकी सेना अफगानिस्तान में तलाश कर रही है। ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक सरकार विरोधी प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। ईरान की पुलिस का कहना है कि गोली लगने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। ये घटना ईरान के नजाफाबाद शहर की है। 5 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन में अब तक 13 लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रपति हसन रूहानी इन प्रदर्शनों को कम आंकते हुए इन्हें देश के लिए खतरा नहीं माना है। ईरान में आर्थिक सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना समर्थन दिया है।
Brave Iranians are pouring into the streets. They seek freedom. They seek justice. They seek the basic liberties that have been denied.
बहादुर ईरानी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग आज़ादी और इंसाफ चाहते हैं जिसे दशकों से ईरान सरकार देने से इनकार कर रही है। ईरान का क्रूर शासन नफरत फैलाने के लिए अरबों डॉलर बर्बाद कर रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में लोगों का सड़कों पर उतरना हैरान नहीं करता है। ये थे इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शब्द। अमरीका में फिल्म उद्योग और दूसरी कामकाजी जगहों पर यौन उत्पीड़न के मुकाबले के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट में 300 से ज़्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इनमें अभिनेत्रियां, लेखक, वकील और निर्देशक शामिल हैं। इस अभियान का नाम टाइम्स अप दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपे विज्ञापन में कहा गया है, मनोरंजन जगत की महिलाओं की ओर से हर जगह मौजूद महिलाओं से बदलाव के लिए एकजुट होने की अपील। इस अभियान के तहत अभिनेत्रियों ने यौन उत्पीड़न का सामना कर चुके लोगों को कानूनी मदद देने के लिए अब तक 1,30,00,000 जमा कर लिए हैं। यह अभियान फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन पर कई हाई प्रोफाइल अभिनेत्रियों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद शुरू किया गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइली सैनिकों को चांटा लगाने वाली फलिस्तीनी किशोरी अहद तमीमी के खिलाफ इसराइल की सैन्य अदालत ने 12 अभियोग लगाए हैं। इनमें पथराव और मारपीट करना शामिल है। वेस्ट बैंक पर बसे अपने गांव में इसराइली सैनिकों को थप्पड़ लगाने वाली एहद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 17 साल की एहद को फलिस्तीनी लोग इसराइली कब्जे के खिलाफ एक हीरो के तौर पर देख रहे हैं। इसराइली सेना के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे सैनिक फलिस्तीनी लोगों को पथराव करने से रोक रहे थे। एहद तमीमी की वकील ने मामले में और सबूत जुटाने के लिए अदालत से वक्त मांगा है।
Because there are so many charges and there is evidence that they collected only after her arrest, we will request.
एहद तमीमी पर इतने सारे आरोप हैं और इसराइली सेना ने घटनास्थल से एहद की गिरफ्तारी के बाद सबूत इकट्ठा किए हैं। हम और समय की मांग इसलिए करेंगे ताकि हम सबूतों की नकल बनवा लें और उसका अध्ययन कर सकें, जिसके बाद हम एहद को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। ये थे एहद तमीमी की वकील गैबी लाश्की के शब्द। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास बसे एक शहर गीज़ा में 2 कॉप्टिक ईसाइयों पर शराब की एक दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिस्र में कानूनी तौर पर शराब की बिक्री की जाती है, इसके बावजूद बीते कुछ वक्त से शराब की दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ के कट्टरपंथी मुसलमान मानते हैं कि शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही है। इससे पहले 30 दिसंबर को कॉप्टिक चर्च और ईसाई धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर हुए हमले में 9 लोग मारे गए थे। बीते एक साल में ईसाइयों पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिल्ली में आज भी सुबह सर्द है, तापमान है करीब 60 डिग्री सेल्सियस। कोहरे की मौजूदगी की वजह से सर्दी के इस मौसम में लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। कई उड़ानों पर ब्रेक लगे हैं तो रेलगाड़ियों के पहियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। उधर हजारों मील दूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर छाई धुंध कुछ और गहरी हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल के पहले ट्वीट में पाकिस्तान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ट्रंप ने पाकिस्तान को धोखेबाज और झूठा करार दिया। ट्रंप ने कहा कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता देने का फैसला मूर्खतापूर्ण था। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में नाकामी से ट्रंप खींच गए हैं। ट्रंप के बयान पर गौर करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज एक कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल सन 2018 की अपनी पहली ट्वीट में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए चेताया है कि अब उसे आर्थिक मदद दिए जाने का सिलसिला जारी नहीं रहेगा। ट्रंप ने पहली जनवरी को सुबह तड़के ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद देना बेवकूफ़ी थी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, अमरीका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद दी और उसने बदले में झूठ और छल के सिवाय कुछ नहीं दिया। वो सोचता है कि अमरीकी नेता मूर्ख हैं। हम अफगानिस्तान में जिन आतंकवादियों को तलाश रहे हैं उन्होंने उन्हें पनाह दी, अब और नहीं। माना जा रहा है कि ट्रंप ने इस ट्वीट में अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर अफगानी लोगों पर हमले करने वाले पाकिस्तान समर्थित हक्कानी नेटवर्क की ओर इशारा किया है। अमरीका का कहना रहा है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान और अन्य आतंकी गुटों को अपने देश में पनाह दिए हुए है और बार बार अमरीका पाकिस्तान से ये मांग भी करता रहा है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकी गुटों को पनाह देना बंद करे और वहां स्थित आतंकी गुटों का सफाया करे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान की आलोचना की है। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति की ओर से जारी की जाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया था, हम पाकिस्तान पर आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जारी प्रयासों में तेजी लाने का दबाव डालेंगे क्योंकि किसी भी देश का आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए कोई योगदान नहीं हो सकता है। इसके अलावा पिछले साल अगस्त महीने में दक्षिण एशिया के बारे में अपनी नीति का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को चेताया था कि वो अपने देश से आतंकी गुटों को निकाल बाहर करे। ट्रंप का यह ट्वीट इसलिए भी पाकिस्तान के लिए एक कड़ी चेतावनी है क्योंकि 22 दिसंबर को माइक पेंस ने अफगानिस्तान के दौरे के दौरान बगराम फौजी अड्डे पर अमरीकी फौजियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अमरीका ने पाकिस्तान को नोटिस पर रखा है।
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over. President Trump has put Pakistan on notice.
अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस कह रहे थे, पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक तालिबान और अन्य चरमपंथी समूहों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराए हैं और अब वो समय बीत चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को नोटिस पर रखा हुआ है। लेकिन ट्रंप की इस ताज़ा ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में कहा कि हम जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट का जवाब देंगे। उन्होंने लिखा, हम दुनिया को सच बता देंगे, तथ्यों और कल्पना के बीच का फर्क बता देंगे। ट्रंप की ट्वीट पर गौर करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने आज अपनी कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है और बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की भी बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान का यह कहना रहा है कि अमरीका पाकिस्तान को जो रकम देता है वो आर्थिक मदद नहीं बल्कि उसमें अधिकतर तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के खर्चे की भरपाई के लिए होता है। लेकिन अमरीका का यह कहना रहा है कि पाकिस्तान कुछ आतंकियों के खिलाफ तो कार्रवाई करता है लेकिन अफगानिस्तान में अमरीकियों पर और भारत पर हमले करने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। भारत भी यही मांग करता रहा है कि हाफिज सईद जैसे आतंकियों और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है बल्कि उन्हें अपनी नीति के तहत औजार के रूप में प्रयोग करता है। उधर अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर रैंड पॉल ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है कि वो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोके जाने के संबंध में सेनेट में भी मुहिम की अगुवाई करेंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
ट्रंप ने ट्विटर पर जो कहा उसकी गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पाकिस्तान को ट्रंप का सख्त संदेश प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का नतीजा है। इस मुद्दे पर बयानों का दौर आज भी जारी रहने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, बात ईरान की। ईरान में बीते गुरुवार से सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में लगातार पांचवें दिन प्रदर्शन हुए। ईरान पुलिस के मुताबिक नजाफाबाद शहर में प्रदर्शनकारियों की ओर से चलाई गई गोली लगने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। इन प्रदर्शनों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का कहना है कि ये विरोध किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए।
به نظر من اون چی که این چند روز واقع شده ظاهرش یه نوع تهدید بوده باید تبدیل کنیم به فرصت
میری رائے میں بیتے دنوں جو کچھ ہوا وہ ایک خطرہ دکھتا ہے لیکن ہمیں اسے افسر میں بدلنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ سمسیا کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویروت کر رہے سبھی لوگوں کو دوسرے دیشوں سے سنکیت ملے ہیں ایسے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں باقی لوگ اپنی بھاوناؤں اور دقتوں کی وجہ سے سڑک پر آئے ہیں उनकी मांग सिर्फ अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है हालांकि ये भी एक मांग है। ये थे ईरान के राष्ट्रपति के शब्द। अमेरिका समेत कई देश विरोध प्रदर्शनों को लेकर ईरान सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अगली खबर भारत से। भारत में चुनाव आयोग ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख तय की है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में खाली हुई 3 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम तय नहीं किया है। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सवालों को बेमानी बता रही है। सुनिए आदर्श राठौर की रिपोर्ट।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीते सप्ताह राजस्थान की 2 और पश्चिम बंगाल की 1 संसदीय सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन चुनाव आयोग ने इन्हीं के समय खाली हुई उत्तर प्रदेश की गोरखपुर समेत 2 और बिहार की 1 संसदीय सीट के लिए उपचुनाव की कोई तारीख जारी नहीं की। इस बात को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसा गुजरात विधानसभा चुनाव में भी देखा जा चुका है और अब उपचुनावों में चुनाव आयोग पर प्रश्न उठ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग पर बीजेपी का दबाव है। पार्टी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा,
जो रवैया है भाजपा का और इलेक्शन कमीशन पर जो दबाव है इनका, उसके कारण ये सब दिक्कत है और नहीं तो इनको फेस करना चाहिए। अभी तो इनकी हालत खराब है, इसलिए ये सोचते हैं जितने दिन टाल सकते हैं टालते रहे। क्योंकि जो गुजरात का चुनाव हुआ वहाँ भी, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत नगर पालिका का हुआ वहाँ भी, और अभी जो सिकंदरा विधानसभा का चुनाव हुआ क्षेत्र का, उसमें भी इनकी हालत खराब हो गई और इनके वोट घट गए।
वहीं बीजेपी ने भी इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने इसको विपक्ष की बेचैनी बताया है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है।
विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है ना केवल बेबुनियाद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मानसिक दिवालापन का एक अच्छा उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश में 30 दिन का या 40 दिन का एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, लेकिन गुजरात में 70 दिन या 80 दिन हो, इस बात पर कई बार प्रश्न उठाए गए। सबने बोला चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जब वो एक संवैधानिक संस्था है, जब विश्व में तारीफ हो रही है कि भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं, विपक्ष थोड़ी ना ये चाह सकता है कि जैसे उसकी मर्जी होगी वैसे ही करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 1 गोरखपुर और 1 फूलपुर की सीट खाली है, जिन पर बीजेपी का कब्जा था। गोरखपुर से यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फूलपुर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की ठान ली है। इसे लेकर उसने 6 जनवरी को विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदर्श राठौर। आज संसद में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पेश होना है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बिल का विरोध कर रही है और उसने आज ओपीडी बंद रखने की अपील की है। विरोध की वजह क्या है ये जानने के लिए हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने आईएमए के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के अग्रवाल से बात की।
नेशनल मेडिकल कमीशन बिल कल पार्लियामेंट में प्लेस हो रहा है, 2 बजे डिस्कशन के लिए आ रहा है। 2 साल से आईएमए सरकार से बोल रही है क्योंकि ये बिल मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, मेडिकल डॉक्टर्स से रिलेटेड है, तो आप मेडिकल फ्रेटर्निटी से इसके बारे में डिस्कस करो। आईएमए 3 लाख मेंबरों की संस्था है, लेकिन आईएमए को डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया गया। आज पहली बार बुलाया गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बिल है ये पेशेंट फ्रेंडली नहीं है, कम्युनिटी फ्रेंडली नहीं है, इससे मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्टली होगा और 112 मेंबर्स की कमेटी जो डिसाइड करती है, आधे से तीन लोग डिसाइड करेंगे और तीनों में से कोई भी इलेक्टेड मेंबर नहीं होगा। एक नॉन डेमोक्रेटिक बॉडी को लाया जा रहा है जो कि देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
आईएमए के कितने अस्पताल हैं जो कल स्ट्राइक के दौरान बंद रहेंगे जो आईएमए से संबंधित हैं?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉल करी है पूरे इंडिया में कि सब लोग अपनी ओपीडी बंद रखें और इसके बावजूद भी अगर बिल पास हो जाता है तो आईएमए आगे डिसाइड करेगा कि इसके बारे में क्या करना।
बिल की किन प्रावधानों से आपको दिक्कतें हैं और आप क्या चाहते हैं कि बिल में कैसे
प्रावधान? पहले तो डेमोक्रेटिक बॉडी है उसको आप नॉन डेमोक्रेटिक बना रहे हो, सारी पावर्स आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हो जो कि ठीक नहीं है और इसके अंदर में बहुत सारे करप्शन के प्रावधान हैं, लूपहोल्स हैं जो आगे जाके करप्शन इंक्रीज कर रहे हैं। आप स्टेट्स को पावर्स भी दे रहे हो कि आप कोई भी डॉक्टर जो है आयुष का डॉक्टर को बैकडोर एंट्री दे रहे हो कि वो मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सके। फिर आप एक एग्जाम कंपलसरी कर रहे हो कि एमबीबीएस पास करने के बाद में भी एक एग्जाम और देना पड़ेगा, उसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
लेकिन अग्रवाल जी, जैसे कि देखा जा रहा है इसमें कहा गया है कि आयुष की जो और आयुर्वेदिक की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक एग्जाम देना होगा तो वो मॉडर्न मेडिसिन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आयुर्वेद के अंदर में अच्छा नहीं है, आयुर्वेद में इलाज नहीं हो सकता। आप ये चाह रहे हो कि होम्योपैथी अच्छा नहीं है, अगर कोई आदमी उसको आप आयुर्वेद के बदले में मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस अलाउ करोगे तो वो आयुर्वेद प्रैक्टिस क्यों करेगा, तो मॉडर्न मेडिसिन ही करेगा। इसका मतलब है कि आप देश से आयुष को खत्म कर देंगे।
अग्रवाल जी, अगर हम देखें देश में जिस तरीके से मेडिकल सुविधाओं की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो इसे आप सरकार का एक अच्छा कदम नहीं मान सकते?
अगर डॉक्टरों की कमी है तो एमबीबीएस की सीटें बढ़ाओ ना, आप एक हाफ टिकट।
चलिए हम इस सवाल पर आते हैं अग्रवाल जी, अगर कल जैसे लोगों की दिक्कतें होंगी, बहुत सारे सामना करना पड़ेगा, आपने ओपीडी बंद करने के लिए कहा,
सरकार से पूछिए हमसे नहीं,
तो ये आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है सर? आप भी एक डॉक्टर हैं पेशे से।
ये हमने ओपीडी बंद करी है, एमरजेंसी बंद नहीं करी, ये सब सरकार आंसर देगी ना इसका कि वो ऐसा क्यों फोर्स कर रही है कि लोगों को स्ट्राइक पे जाना पड़े। सरकार का जवाब देना होगा, एमरजेंसी कर रहे हैं, ओपीडी बंद कर रहे हैं। जनरल ओपीडी संडे को भी तो बंद होती है ना, कल संडे है हमारे लिए, ब्लैक संडे टुमारो,
ब्लैक ट्यूसडे को वो ब्लैक संडे बता रहे थे डॉक्टर के अग्रवाल। अगली खबर असम से। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनसीआरसी की पहली सूची जारी कर दी गई है, माफ कीजिएगा एनआरसी की पहली सूची जारी कर दी गई है। पहली बार 1991 में बनाई गई एनआरसी को दोबारा बनाने का क्या मकसद है? हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक से यही सवाल किया।
1951 में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस असम में हुआ था उसको आधार कर एक नया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस बनाने का जो फैसला असम सरकार ने लिया था, 21 दिसंबर रात उसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है उसको प्रकाश किया गया है, जिसमें 1.9 करोड़ लोगों का जो नागरिकत्व उसको कबूल किया गया है, उसको स्वीकार किया गया है और उनका नाम जो है ये फर्स्ट ड्राफ्ट में रखा गया है। इसी के आधार पर आने वाले दिनों में असम में इलेक्टोरल रोल्स बनेगा। ये बीजेपी का एक कमिटमेंट था, बीजेपी भाजपा सरकार जब भाजपा ने जब चुनाव लड़ा था असम में तो उनका ये कमिटमेंट था कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस का काम शुरू, हालांकि कांग्रेस सरकार ने किया था काफी जोर शोर से, जो दबाव उनके ऊपर क्षेत्रीय दलों से आया, क्षेत्रीय संगठनों से जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि असम में एक ऐसा वोटर लिस्ट हो जिसमें कि कोई घुसपैठ, कोई बाहर से आया हुआ अवैध घुसपैठ को जगह ना मिले। आपको ये जरूर मालूम है कि असम में इस मुद्दे पर 1980 से 85 तक जबरदस्त आंदोलन हुआ था। असम के राजनीति में ये अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा है।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो था वो क्या सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों को ध्यान में रखकर इसका आइडिया दिया गया था?
कहा तो जाता है शायद कि ये बांग्लादेशी मुसलमान सिर्फ नहीं, बांग्लादेश से जो आए हैं और अवैध तरीके से, ये उनके लिए है। यहाँ एक बहुत बड़ा कश्मकश पैदा हो चुका है, भाजपा और उनके साथ जो सत्तारूढ़ गठबंधन में जो असमीय क्षेत्रीय दल असम गण परिषद शामिल है उनके साथ, इसको लेकर एक बड़ा कश्मकश पैदा हुआ है। क्योंकि भाजपा का ये मानना है कि 1971 जो असम अकॉर्ड में डेडलाइन माना गया है कि उसके बाद जो लोग आए हैं वो अवैध है, वो भारतीय नागरिकत्व का दावेदार नहीं बन सकते हैं। भाजपा ने ये कहा है कि उसके बाद भी जो हिंदू आए हैं वो जेन्युइन रिफ्यूजी माने जाएंगे, उनको शरणार्थी माना जाएगा क्योंकि वो बांग्लादेश से उनके मुताबिक दबाव में आकर आए हैं, जो मुसलमान आए हैं उनको घुसपैठ माना जाएगा। बट असम में जो क्षेत्रीय दल है असम गण परिषद जो कि भाजपा के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में है, उनका कहना है कि असम एकॉर्ड को ही मानना पड़ेगा। जो 25 मार्च 71 के बाद आया है वो बंगाली हिंदू हो, मुसलमान हो या नेपाल से आया हुआ हिंदू हो, इसमें धर्म कोई फैक्टर नहीं, मजहब कोई फैक्टर नहीं। जो उसके बाद कोई दूसरे देश से आया है और असम में बैठ गया है उसको घुसपैठ माना जाएगा। तो ये लेकर बहुत जबरदस्त तनाव है।
एनआरसी को लेकर जानकारी दे रहे थे सुबीर भौमिक। और अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विकास त्रिवेदी।
वात्सल्य, कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर जिस तरह से बोला था, ट्वीट किया था, उसको लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है तो सभी अखबारों ने उसको पहली ही अपनी खबर बनाया है। और इंडियन एक्सप्रेस ने ट्रंप के बयान की हेडिंग लगाई है कि अमेरिका ने बेवकूफ़ों की तरह 15 साल पाकिस्तान की मदद की और उसके बदले में हमें झूठ और धोखा मिला,
जो उनका बयान था ट्विटर पर।
जी जी जी। अखबार ने इस खबर के साथ जो तस्वीर लगाई है वो पुलवामा में जो चरमपंथी हमला हुआ था और सेना के जवान मारे गए थे उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीर को लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की ही, तो मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद हैं
जी,
उनके संगठनों पर चंदा लेने पर रोक लगा दी है पाकिस्तान ने। और ये ऐसे वक्त में खबर आई थी कि जब ट्रंप का ट्वीट आया उसके कुछ देर बाद ही आ गई थी ये खबर, तो सभी अखबारों ने इसको भी अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। जो बैंक खाते होते हैं उनमें मिनिमम बैंक बैलेंस ना रखने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1771 करोड़ रुपए खाता धारकों से फाइन के तौर पे वसूल किए हैं।
मतलब इतना बड़ा फाइन वसूला गया
जी, तो जो रहता है कि आपको कुछ लग जाता है फाइन, तो उससे थोड़े थोड़े फाइन के साथ 1771 करोड़
न्यूनतम बचत राशि होनी चाहिए बचत खातों में जी।
तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको दूसरी खबर बनाया है क्योंकि कल 1 जनवरी थी और जो ठंड थी वो दिल्ली में और उत्तर भारत में काफी ज्यादा रही थी, तो जनसत्ता ने कोहरे की एक तस्वीर को अपने पहले पन्ने पर लगाया है और लिखता है, कोहरे और ठंड में लिपटा रहा नया साल का पहला दिन। हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसी खबर से जुड़ी एक खबर है और अखबार लिखता है कि कोहरे का असर 300 उड़ानों पर पड़ा, कल कई जो फ्लाइट्स थी वो लेट रही थी।
हालांकि दिल्ली की सड़कों पर तो कल ट्रैफिक का असर भी दिख रहा था।
जी जी,
जिस तरह से लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकले थे, कई घंटे जाम लगा रहा।
इसके अलावा इसी अखबार में जो एंकर खबर है वो असम से है और उसमें जो कल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसौदा जारी किया गया था,
तो जिसके बारे में भी हमने सुबीर भौमिक साहब से बातचीत सुनवाई,
तो उसमें अखबार लिखता है कि 1,90,00,000 लोगों को नागरिक के तौर पर मान्यता मिली। हालांकि अगर आप दूसरे अखबार देखेंगे तो ये जो ये संख्या है ये अलग अलग है, हर कोई अलग अलग आंकड़ा रख रहा है
जी।
अमर उजाला अखबार की खबर है कि देश भर के डॉक्टर आज 12 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे, तो ये खबर है क्योंकि आज लोकसभा में जो बिल पेश किया जाना है उसका विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। अखबार ने दिल्ली में नए साल के मौके पर जो सड़कों पर लोगों की भीड़ और गाड़ियों की तस्वीर छापी है और लिखा है कि इतिहास में पहली बार इंडिया गेट पर 3 लाख लोग रहे हैं कल रहे थे नए साल के मौके।
कल टेलीविजन चैनल्स पर ये संख्या 1,00,000 से 2,00,000 के बीच बताई जा रही थी
जी। जनसत्ता की खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मकान खरीदने वालों और कर्ज ले रहे ग्राहकों को राहत दी है। अमर उजाला अखबार ने भी इसको कवर किया और शीर्षक दिया है कि स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरें घटाई हैं,
यानी एक राहत की खबर ये है।
हाँ,
जिसे आपने सबसे आखिर में बताया जी, बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब बात जर्मनी की उन महिला की जो बीते 4 दशकों से उत्तर प्रदेश के मथुरा में रह रही हैं और बीमार गायों की देखभाल में जुटी हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र बीते दिनों इनकी गौशाला को देखने गए, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
मथुरा के पास राधा कुंड में फ्रेडरिक ब्रेनिंग से हमारी कुछ इस तरह से मुलाकात हुई। जिंदगी के 60 से भी ज्यादा वसंत देख चुकी ब्रेनिंग सैकड़ों गायों के बीच गोबर से लिपे पुते एक छोटे से घर में रहती हैं। उनके चारों ओर सिर्फ गायें ही गायें हैं। अपने भारत आने और मथुरा में बसने की कहानी वो कुछ इस तरह सुनाती हैं।
मैं करीब 40 साल पहले आया इन यमन टूरिस्ट दुनिया देखने के लिए और भगवद गीता मिला मेरे को। भगवद गीता पढ़ के बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। जो जवान उम्र मन प्रश्न होता मन मन, काई को जीना है, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे जन्म ले लिया, मर गया तो क्या होगा, इसी मन जवाब मिला मेरे को। तो गुरु महाराज ढूंढ के राधा कुंड में पहुँच गया। यही मंत्र दीक्षा ले लिया, यही भजन खाने लगे जितना हमसे होता था।
मथुरा में गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा मार्ग के बाहरी ग्रामीण इलाके में फ्रेडरिक ब्रीडिंग की करीब 1200 गायों की एक गोशाला है। वैसे तो ब्रज के इस इलाके में तमाम गोशालाएं हैं और काफी बड़ी भी हैं, लेकिन सुरभि गौसेवा निकेतन नाम की उनकी इस गोशाला की खास बात यह है कि यहाँ वही गायें रहती हैं जो या तो विकलांग हैं या बीमार हैं या फिर किन्हीं कारणों से उनका कोई सहारा नहीं है। गोशाला में काम करने वाले सतीश बताते हैं,
हमारे यहाँ लंगड़ी लूली एक्सीडेंट बीमार गाय इनकी सेवा की जाती है। दिन में दो दो चार चार पाँच पाँच गाय आती हैं एक्सीडेंट की, उनको सबको देखना, दवाई देना, पट्टी करना, इनका खाना देना, पानी देना।
गायों के प्रति अपने इस लगाव की वो वजह बताती हैं।
पचरा पड़ा हुआ मिला रास्ते में, फार्म टूटा पीछे और आरा शरीर में पीछे हिस्सा कीड़ा से टका हुआ है, मक्की बहता था, न भयंकर स्थिति था। एक और एक गंध और तो खुदा आ रहा था, खा लेता जिन्ना, इतनी दुखी थी हम तो, वो सबसे पहले खेसता।
ब्रुनिंग कहती हैं कि शुरू में उन्होंने अपने पिता से कुछ आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन अब उनकी सहायता के लिए कुछ स्थानीय लोग भी आगे आए हैं।
मेरे पिताजी हमसे मिलना आए बहुत साल के बाद, और पिताजी का मेहरबानी से, पिताजी का प्रेम से वो यहाँ शुरू हुआ, ये अब जो गौशाला बन गया और काफ़ी बड़ा हो गया।
लेकिन आपके घर वालों ने नहीं कहा कि ये क्या करने जा रही है, फालतू का काम है ये सब?
हाँ, शुरू में तो शुरू बोला माता पिता, बोला तुम क्या करे वहाँ, यहाँ आ जाओ, यहाँ यूनिवर्सिटी तुम शादी कर दे, कुछ तो कर दे, वहाँ क्या करे, टाइम खराब हो रही है। मेरे को उधर रहना पसंद नहीं हुआ, पसंद नहीं आया।
सुरभि गौशाला तीन हिस्सों में बटी है। बाहर की ओर दो हिस्सों में गायों के स्वच्छंद विचरण की जगह है, जहाँ उन्हें हरा चारा खिलाया जाता है। एक हिस्से में उनके खाने पीने का सामान रखा जाता है और गेट के भीतर स्थित हिस्से में सुबह शाम गायें उस वक्त आती हैं जब उन्हें नाद में भूसा खली चोकर मिश्रित चारा दिया जाता है।
जर्मनी पसंद नहीं आया, मथुरा में गायों की सेवा रास आई। जिस वक्त राजनीति में गाय एक प्रमुख मुद्दा है, ये रिपोर्ट एक अलग तस्वीर सामने लाती है। रिपोर्ट सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। इस पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और अब जान लेते हैं खेल की दुनिया की हलचल।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां बेन स्टोक्स के लिए अच्छी खबर है। इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से भारत में आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल गई है। पिछले साल सितंबर में हुए ब्रिस्टल विवाद के कारण बेन स्टोक्स को वर्तमान में इंग्लैंड टीम में शामिल नहीं किया है। बेन स्टोक्स को इस मामले में अब भी पुलिस की जांच के परिणाम का इंतजार है। पिछले साल 26 साल के स्टोक्स को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स द्वारा 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। वह सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे थे। ब्रिस्टल विवाद में फंसे होने के कारण वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन अब वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास मैच के दौरान एक प्रशंसक पर हमला करने को लेकर बांग्लादेश के बल्लेबाज शब्बीर रहमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। शब्बीर पर 20 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है। अगले 6 महीने तक शब्बीर घरेलू क्रिकेट में भी नहीं खेल सकेंगे। बीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शब्बीर बी ग्रेड में आते थे। वे बांग्लादेश के पहले ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें इस तरह की सजा दी गई है।
श्रोताओं, भारत का इतिहास कितना पुराना है? मुंबई में भारत के 20 लाख साल के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी को 9 वर्गों में बांटा गया है। क्या खास है इस प्रदर्शनी में, अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। वक्त आपसे विदा लेने का हो रहा है, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। ट्विटर ने जर्मनी के फार राइट अल्टरनेटिव पार्टी के नेता बियाट्रिक्स फॉन स्टॉफ के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। ट्विटर ने उनके एक ट्वीट को भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आंकते हुए ये कदम उठाया है। ब्राजील पुलिस ने कहा है कि गोवास की एक जेल में हुई हिंसक झड़प में कम से कम 9 कैदी मारे गए हैं। जेल के अधिकारियों का कहना है कि ये झड़प जेल के 2 गुटों के आपस में टकराने के बाद शुरू हुई। इनमें से कुछ कैदी हथियारों के साथ दूसरे गुट के कैदियों से जा भिड़े। इस भिड़ंत के बाद 100 से ज़्यादा कैदी जेल से फरार हो गए। इनमें से कुछ कैदियों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी कुछ फरार हैं। ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक सरकार विरोधी प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं। ईरान की पुलिस का कहना है कि गोली लगने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। ये घटना ईरान के नजाफाबाद शहर की है। अमरीका में फिल्म उद्योग और दूसरी कामकाजी जगहों पर यौन उत्पीड़न के मुकाबले के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट में 300 से ज़्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इनमें अभिनेत्रियां, लेखक, वकील शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।